హే బ్రహ్మ బాబా పావన్ బ్రహ్మ బాబా జబ్ సే తుమ్సే ప్రీత్ లగీ హై హే బ్రహ్మ బాబా పావన్ బ్రహ్మ బాబా మన మే అద్భుత శక్తి జగీ హై శక్తి జగీ హై హే బ్రహ్మ బాబా పావన్ బ్రహ్మ బాబా తుమ్ తేజస్వి ప్రతిభాశాలి కర్తే హమ్ సబ్ కీ రఖవాలీ తుమ్ దానవీర్ హో దాతా హో సబ్ కే భాగ్య విధాతా హో సబ్ కే భాగ్య విధాతా హో బ్రహ్మా బాబా నిశ్చల్ బ్రహ్మా బాబా జబ్ సే తుమ్సే ప్రీత్ లగీ హై హే మీఠే బాబా పావన్ బ్రహ్మ బాబా
శాంతి. రాత్రి సెషన్ మే ఆప్ సభీ కా ఫిర్ సే హార్దిక్ స్వాగత్ హై. कल से आप सभी अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करेंगे और जब अपने मित्र संबंधियों से आप मिलेंगे तो जरूर आपसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के बारे में वो लोग पूछेंगे भी और आप कहने के बिना रह भी नहीं सकेंगे, क्योंकि तीन दिन के अंदर आप सभी ने बहुत कुछ यहाँ पर पाया हुआ है. अभी इस सेशन के अंदर गीता बेन जी के द्वारा ब्रह्मा कुमारी की हिस्ट्री को हम जानेंगे, कैसे 1937 से लेकर के पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपने घर में आसपास के पड़ोसियों को बुला करके एक छोटे से सत्संग के रूप में इसकी शुरुआत की. और आज 2009 में ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय किस प्रकार से विश्व के अंदर प्रचलित हैं और उसका कार्य विश्व में किस प्रकार से फैला हुआ है, तो आपको 1937 से लेकर के आज दिन तक के इसकी स्थापना और इनका विस्तार, इसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, कितने सारे लोगों का इसके अंदर तन मन धन समय शक्ति श्वास सब सहयोग मिल रहा है और किस प्रकार आज के दिन में भी इसके ये प्रगति, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि दिन में जितनी होती है उससे बढ़कर के रात को होती है और रात को नहीं होती उतनी दिन में होती है, तो प्रति मिनट इसकी प्रवृत्ति विश्व के कोई न कोई स्थान पर चल रही है और पूरे विश्व के अंदर मनसा के द्वारा भी सूक्ष्म शुभ भावना शुभ कामना साइलेंस के वाइब्रेशन जो है वो दिए जाते हैं। तो आपको गीता बेन का परिचय तो दो दिन से मिला हुआ है, मॉर्निंग में जो सेशन आपका वो लेते हैं, इसलिए आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो और हम लोगों ने सुना है वो सेशन आप सभी को बहुत ही पसंद आता है, गीता बेन जी को सुना हुआ है। तो आज लास्ट में भी आपको गीता बेन जी से सुनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। गीता बेन जी से हम यज्ञ की हिस्ट्री सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे हम सर्व मनुष्य आत्माओं के आदि पिता, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, हमारे अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, जिसके साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना का इतिहास जुड़ा हुआ है, वो सुनाने का मुझे मौका मिला है। हम भक्ति में भी शास्त्र पढ़ते हैं और उसमें भी ये बातें सुनते रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का सर्जन करते हैं। गॉड शब्द में जो तीन अक्षर हैं जी ओ डी, तो जी मीन्स जनरेटर, ओ मीन्स ऑपरेटर एंड डी मीन्स डिस्ट्रक्टर। तो जो जनरेशन का कार्य है, उत्पत्ति सर्जन का कार्य भगवान ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। तो अब तक हमारी बुद्धि में ये था कि कैसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा एक एक मानव शरीर की रचना करते हैं और उसमें प्राण डालते हैं। ये पौराणिक शास्त्रोक्त बातें हैं, लेकिन उसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, तो आज मॉर्निंग के लेसन में हम सभी ने पिता परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त किया कि विश्व के सर्व धर्म की आत्माओं के पिता परमात्मा वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप कल्याणकारी शिव पिता है, जो सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर है, जो कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में सृष्टि पर आते हैं और सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? ऐसा नहीं है कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा कोई नए सूर्य चांद सितारे या कोई नई पृथ्वी धरती उत्पन्न करते हैं, कोई स्थूल सर्जन की बात नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि प्रकृति भी अनादि अविनाशी है और हम आत्माएं चैतन्य शक्ति भी अनादि अविनाशी हैं, और इस प्रकार अविनाशी प्रकृति और अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्माओं का बना हुआ यह संसार खेल भी अनादि अविनाशी है। इसलिए स्थूल रूप से कोई नए सूर्य चांद सितारे या पृथ्वी उत्पन्न करने की बात नहीं है। मानव शरीर कैसे बनते हैं वो भी हम जानते हैं। वास्तव में परमात्मा विश्व परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति परिवर्तन करते हैं, क्योंकि मनुष्यात्मा सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी है। मनुष्यात्माओं के परिवर्तन के आधार पर प्रकृति, पशु, पंछी, जगत भी क्रमशः परिवर्तन को प्राप्त होते हैं। इसलिए विश्व को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा मनुष्यात्माओं को परिवर्तन करते हैं, व्यक्ति परिवर्तन करते हैं, व्यक्ति की चेतना शक्ति को परिवर्तन करते हैं, अर्थात आत्माओं के पतित संस्कारों को बदलकर सतयुगी दैवी श्रेष्ठ संस्कारों की उसमें स्थापना करते हैं। इसलिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना माना, ब्रह्मा द्वारा परमात्मा आत्माओं में श्रेष्ठ संस्कारों की, नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। तो परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। इसलिए हम मनुष्य आत्माओं की तरह वे कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कोई कर्म बंधनी आत्मा नहीं है। परमात्मा कर्मातीत कहे जाते हैं। इसलिए कलयुग के अंत समय जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो वे साधारण मानव तन में प्रवेश करते हैं। उनका अपना कोई कर्मिक अकाउंट नहीं है जो कोई माता पिता से जन्म ले और अपना बचपन, युवा, वृद्ध ये जीवन जिए। इसलिए कलयुग के अंत में सभी मनुष्यात्माएं साधारण स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं। अभी कोई भी देवताई आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा नहीं है। कलयुग के अंत में सभी आत्माएं साधारण मानव स्थिति में होती हैं। तो ऐसे अनेक साधारण मनुष्य आत्माओं में से परमात्मा को जो योग्य लगता है उस साधारण मानव तन में वे दिव्य प्रवेश करते हैं और उसके मुख से हमें भक्ति का फल, सत्य ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा शिव जिस साधारण मानव तन द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को भक्ति का फल, सत्य ज्ञान देते हैं और जिनके द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते हैं, उस निमित्त माध्यम को प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको हरेक धर्म वाले मान्य करते हैं। कोई उससे आदि देव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं, कोई उससे एडम, आदम कहते हैं, हिंदू भाई बहने उससे ब्रह्मा कहते हैं। जैसे आज से 40 वर्ष पूर्व, क्योंकि इस विद्यालय से जुड़े हुए मुझे 40 वर्ष हुए, तो आज से 40 वर्ष पूर्व मैं एक गीता बहन थी। इस ईश्वरीय ज्ञान को समझने के बाद जीवन में धारण करने के बाद, उनके नियम संयम को अपनाने के बाद, मुझे ब्रह्मा कुमारी गीता बहन कहा जाता है। इस प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा ये परमात्मा ने दिया हुआ कर्तव्यवाचक नाम है, जिस माध्यम द्वारा भगवान अपना कार्य शुरू कराते हैं उससे कर्तव्यवाचक नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिसका फोटो आप देख रहे हैं उनका पूर्व नाम दादा लेखराज था। और 1876 में सिंध हैदराबाद में एक कृपलानी सिंधी परिवार में बाबा का जन्म हुआ, शारीरिक जन्म, और परिवार से ही बहुत सात्विक संस्कार के थे। उनके लौकिक पिताजी, दादा लेखराज के लौकिक पिताजी स्कूल में अध्यापक थे और एक साधारण स्थिति में थे, लेकिन अपनी तेजस्वी बुद्धि के आधार से और स्वयं के प्रयत्न से फिर दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा फिर ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया और बहुत ही प्रसिद्ध ज्वेलर सिंध में वो बन गए और बहुत अच्छे धनाढ्य स्थिति में वो आ गए। तो बाबा वैष्णव परिवार से थे, इसलिए सिंधी होते हुए भी बाबा का आहार विहार व्यवहार बहुत सात्विक था और बाबा बहुत ही भक्त थे। ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी, भक्ति भावना थी, इसलिए बाबा नारायण के भक्त थे, उपासक थे और नित्य प्रति गीता पाठ करते थे। बहुत धनी थे फिर भी बहुत ही दानी थे और ईश्वर को जानने की, प्राप्त करने की, सत्य को पाने की बहुत ही उत्कंठा थी, जिसके कारण बाबा ने अपने लौकिक जीवन में 12 गुरु किए थे ताकि सत्य क्या है वो पता चले। और बाबा अपने व्यापार में भी इतने ईमानदार और प्रतिष्ठित विश्वास पात्र व्यक्ति थे कि राजा महाराजाओं के घरानों में भी बाबा की ही ज्वेलरी जाती थी। इवन यहाँ उदयपुर के महाराजा और नेपाल के महाराजा के साथ भी बाबा के घरेलू रिश्ते थे और उनके दरबार में भी वे बाबा को बुलाते थे। और बाबा इतने रॉयल थे संस्कारों से, व्यवहार से, कि ये राजाएं बाबा को कहते थे कि लखीराज, उनको लखीराज बाबू कहते थे कि लखीराज बाबू, भगवान ने भूल से हमें राजा बना दिया है, बाकी राजा तो आप है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व और संस्कार बहुत ही राजवी और रॉयल है। तो इस प्रकार से बाबा उन राजा महाराजाओं को, अंग्रेजों के भी वाइसरॉय ऑफिसर्स वगैरह बाबा के पास आते थे और बाबा उनको कोई पार्टी पिकनिक देते थे, उसमें भी शराब मांसाहार नहीं रखते थे। माना बाबा का जीवन जो है वो बहुत ही संयम और नियम वाला था। गुरु के बुलावे को बाबा काल का बुलावा समझते थे। घर में चाहे कोई भी प्रसंग हो लेकिन गुरु ने उसको याद किया और बुलाया, माना बाबा वो प्रसंग छोड़ करके भी जाते थे। इतनी अनन्य उसकी गुरु भक्ति भी थी। तो एक बार बाबा बंबई में जब गए थे बबुलनाथ का जो मंदिर है गामदेवी में, तो उसके पास में ही अपने मित्र के यहाँ गए थे, तो बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ था और उसमें उनको ये कहा गया कि अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तुमको भी ऐसा बनना है। लेकिन बाबा को इतना कुछ समझ में नहीं आया और फिर आगे अपने व्यापारिक संबंधों से बाबा फिर एक बार वाराणसी में गए अपने मित्र के पास, क्योंकि अंदर से सत्य की खोज थी, भगवान के प्राप्ति की लगन थी। भल इतने धनाढ्य और प्रसिद्ध व्यापारी थे, लेकिन बाबा को अंदर से ईश्वर के प्रति ही निष्ठा थी। इसलिए लौकिक में भी उनकी बेटी की शादी हुई तो बाबा ने उसको चांदी का वो मंदिर बना करके ही भेंट दिया था, और अपनी एक बेटी की शादी, जबकि बाबा इतने संपन्न परिवार के थे, फिर भी एक योगी राज से बाबा ने उनकी शादी कराई थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इतने संपन्न होते हुए भी बाबा को महत्व आध्यात्मिकता का था और श्रेष्ठ संस्कारों का था। तो वाराणसी में जब वो अपने मित्र के पास गए थे तो उनको साक्षात्कार हुआ कि कैसे पुरानी कलियुगी दुनिया का महाविनाश बहुत जल्दी होने वाला है। अगर कल आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पांडव भवन में ओम शांति भवन है, वहाँ जो आर्ट गैलरी है उसमें बाबा के जीवन चरित्र के फोटोग्राफ्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि बाबा को महाविनाश का साक्षात्कार हुआ कि कैसे जल्दी ही इस पुरानी कलियुगी दुनिया का महाविनाश होगा। और उसमें तीन बातें उनको साक्षात्कार में बताई गई कि अणु युद्ध, ग्रह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा बहुत जल्दी ही ये संसार का महापरिवर्तन होगा। तो नेचुरली उसके बाद बाबा अंदर से उपराम रहने लगे और बाबा वाराणसी से कलकत्ता गए अपना बिजनेस समेटने के लिए, क्योंकि फिर उसका व्यापार में दिल नहीं लगता था। तो उसका जो पार्टनर था वो तो टोटली बाबा पर ही डिपेंडेंट था, इसलिए जब बाबा ने कहा कि भाई मैं तो अब इस साधना में ही लगना चाहता हूँ, तो मेरा जो भी हिस्सा बनता हो तुम मुझे वो हिस्सा दे दो, पर वो बाबा को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि बाबा में वो आर्ट ऑफ बिजनेस थी। लेकिन बाबा को तो ये दिव्य अनुभूतियां शुरू हो गई थी, तो बाबा ने अपना व्यापार समेट लिया और फिर वो वापस सिंध हैदराबाद गए, जहां उनके लौकिक चाचा मूलचंद जी बिल्कुल सीरियस बीमार थे और उन्होंने शरीर छोड़ा, तो बाबा वहां ही उपस्थित थे। उस समय भी बाबा को ये साक्षात्कार हुआ कि कैसे आत्मा धीरे धीरे पूरे शरीर से चेतना समेट कर आत्मा कैसे शरीर से निकल जाती है, और फिर से बाबा को विष्णु चतुर्भुज का, श्री कृष्ण का और श्रीनाथ जी का साक्षात्कार हुआ। तो इस प्रकार साक्षात्कार के द्वारा उनको ये दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती गई और उसके कारण बाबा को अंदर से और भी भगवान से लगन लग गई और बाबा अपने लौकिक जीवन से उपराम होने लगे। तो एक बार बाबा के घर में गुरुजी आए हुए थे और सत्संग चल रहा था, बाबा उसमें बैठे थे और बाबा की ये डिसिप्लिन थी कि कभी भी जो सत्संग के बीच से कुछ भी काम हो बाबा उठ के नहीं जाते थे। लेकिन वो फर्स्ट टाइम था कि बाबा को अंदर से और कुछ अनुभव हो रहे थे, तो बाबा सत्संग से उठकर अपने कमरे के अंदर चले गए। तो ये देखकर बाबा की जो पुत्र वधू, जिसका अलौकिक नाम हम दादी ब्रिजेंद्रा कहते और वो महाराष्ट्र जोन की हेड थी, बॉम्बे में सायन के केंद्र में जब भारत में आने के बाद वो रहती थी, तो वो उनकी पुत्र वधू थी, तो वो भी बाबा के पीछे उठ करके कमरे में गई। तो उसने देखा कि उनको भी ये दिव्य साक्षात्कार हुए कि कैसे पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ था और बाबा एकदम तेजोमय लग रहे थे। और बाबा के मुख से, क्योंकि मस्तक में बहुत ही प्रकाश दिख रहा था, और बाबा के मुख से ये शब्द उच्चारण हो रहे थे कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये दिव्य वाणी उन्होंने सुनी और बाबा उस अनुभूति में थे। तो इससे दादी ब्रिजेंद्रा को भी पता चला कि कोई दिव्य शक्ति बाबा के तन में प्रवेश हुई है और ये शब्द ब्रह्मा बाबा के नहीं है, जरूर और कोई अलौकिक शक्ति के ये शब्द है। तो फिर तो बाबा बहुत उपराम थे, बेहद का वैराग्य था, ईश्वर के प्रति लगन थी, और बाबा ने अपने घर में ही अड़ोस पड़ोस वालों को ये सत्संग कराना शुरू कर दिया। बाबा ने खुद अपने आप को भी वो आत्मा का पाठ पक्का कराया, परिवार के सदस्यों को भी वो संस्कार दिए। उनकी धर्म पत्नी जसोदा थी, नाम उनका जसोदा माता हम कहते, तो उनके अंदर वो भी बहुत पति परायण स्त्री थी और बहुत धार्मिक संस्कार वाली थी। तो घर के बच्चों को अड़ोस पड़ोस सब मतलब इकट्ठे होकर बाबा उसको यात्मा का पाठ पढ़ाते थे और ओम की धुनी से इस विद्यालय की शुरुआत हुई। तो इससे लोग उसको ओम मंडली कहने लगे, जो शुरुआत में विद्यालय को ओम मंडली के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो वो नाम लोगों ने ही रखा क्योंकि ओम की धुनी कराई जाती थी, तो लोग उसको ओम मंडली कहने लगे। और पूरे सिंध में से अनेकों को ऐसे दिव्य साक्षात्कार हुए और अनेक माताएं कन्याएं परिवार भाई इसमें आने लगे। उन अनेक माताओं कन्याओं में एक बहुत ही तेजस्वी कुमारी जो आई, जो उस समय 15 वर्ष की आयु की थी, 15-16 वर्ष की, वो जिसको हम मम्मा कहते हैं, ओम राधे उसका नाम बाबा ने रखा क्योंकि उनका लौकिक नाम राधे था। और सचमुच ही वो शारीरिक व्यक्तित्व से और संस्कारों से बिल्कुल दिव्यता संपन्न थी, तो ओम राधे उसको कहने लगे। तो बाबा फिर अपने और अधिक साधना चिंतन एकांत तपस्या के लिए बाबा कश्मीर चले गए और इधर पीछे मम्मा ने ये सत्संग रोज चलाना कराना शुरू किया। और बाबा के तरफ से भी पत्र के द्वारा ज्ञान के गहरे राज बातें अलौकिक डायरेक्शंस आने लगे और इस प्रकार ये सत्संग फैलता गया, लोगों के जीवन में सुधार आता गया, उनके आहार विहार बदले, क्योंकि वो समाज उस समय सिंधी समाज जो था उस समय वहाँ वो आहार भी अशुद्ध था, फैशन थी, गलत रस्में थे, क्योंकि विदेश जाकर वो लोग बहुत पैसे कमाते थे, तो वो सब बातों में सुधार होने लगा और समाज में एक नया वेव उत्पन्न हुआ कि भी दादा लेखराज ने ये सत्संग शुरू किया है, वहाँ बहुत अच्छे साक्षात्कार होते हैं और जीवन में परिवर्तन होता है। तो 1937 ये शुरू हुआ सब 1936 में, और 1937 अक्टूबर में बाबा ने परमात्मा शिव के आदेश से अपनी चल अचल जो भी संपत्ति थी वो बाबा ने विश्व सेवा के लिए, जैसे शिव बाबा ने आदेश दिया तो 5 बहनों के नाम से ट्रस्ट बनाया गया और पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पर कर दी कि आज से ब्रह्मा बाबा भी समर्पित है और अब ये सारा कार्य बहनों के द्वारा होगा, क्योंकि शिव बाबा ने ये आदेश दिया कि अब तक द्वापर युग से धर्म का विशेष कार्य पुरुषों के द्वारा हुआ। आप देखिए द्वापर युग में जितने भी धर्म स्थापन हुए पुरुषों के द्वारा हुआ, तो धीरे धीरे संसार पुरुष प्रधान बन गया और स्त्री गौण मानी जाने लगी और एक इम्बैलेंस संसार के अंदर क्रिएट हुआ। इसलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये आदेश दिया कि अब फिर से बैलेंस बनाने के लिए माता प्रथम गुरु हैं, वंदे मातरम, भारत माता शक्ति अवतार के सिलसिले को पुनः शुरू किया जाए। तो मम्मा दादी और हमारी चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, ऐसे 5-7 बहनों के नाम पर ट्रस्ट बना और बाबा इन बहनों के द्वारा सारा कार्य कराने लगे। तो जो माताएं आई, बहनें आए, उन्होंने बच्चों में भी ये संस्कार डालने के लिए सजेस्ट किया कि लौकिक स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए। तो छोटे बच्चों के लिए एक बोर्डिंग शुरू कराई गई और उन बच्चों को भी बाबा ये दैवी संस्कार देने लगे। कल जो आप सभी दादी गुलजार जी से मिले, कल शाम को दादी आई थी इस विद्यालय की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी हृदय मोहिनी जी, जब बोर्डिंग बना तो दादी जी उस समय केवल 9 वर्ष की आयु की थी और अपनी लौकिक माता जी के साथ दादी यज्ञ में, मैंने बोर्डिंग में रहना उसने शुरू किया। आज वो दादी हमारे सामने एक डिवाइन ट्रांस मैसेंजर है, उनके द्वारा हमें लेटेस्ट जो बाबा के डायरेक्शंस है, मैसेजेस है, वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे बच्चों की बोर्डिंग शुरू हुई, कई कन्याएं माताएं भी अपने परिवार से, गार्डियन से, माता पिता से अपनी सम्मति का पत्र लेकर उसमें समर्पित होने लगी। आज तक भी इस विद्यालय का ये नियम है, यहाँ कोई ऐसे ही आकर नहीं रह सकता है। यहाँ हम भी जो आकर यहाँ रहे हैं तो हमारे माता पिता का स्वीकृति पत्र होता है कि हम अपनी राजी खुशी से और सारा जान समझ करके बेटी की लगन है और हमें भी खुशी है, हम उसको इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित करते हैं और वो इस विद्यालय के नियम संयम अनुसार सेवा कार्य में अपना जीवन सफल करेगी। इसमें हमें भी खुशी है, ऐसा माँ बाप की स्वीकृति का पत्र हमें मिले उसके बाद ये विद्यालय हमें यहाँ रखता है। तो शुरू से बाबा ने ये नियम बनाया था और इस प्रकार जब समर्पित जो लगभग 350-400 भाई बहने थे, जिसमें मेजोरिटी बहने थी, कुछ भाई थे, क्योंकि बाबा का ये कहना था कि हम बहने कुमारियां, जीवन हमें किसी को देना ही है। और लौकिक में लोग समझते हैं कि भाई कन्या माना पराई पराया धन है, उसे किसी के घर जाना ही है, तो क्यों नहीं हम ईश्वर को अपना जीवन दें और विश्व की सेवा करें। तो मेजोरिटी कुमारियां थी, कुछ माताओं को भी घर से परमिशन मिली और कुछ भाई, क्योंकि भाई मैरिड है तो परिवार की जवाबदारी है, अनमैरिड है तो माँ बाप की भी जवाबदारी है। इसलिए बाबा का सदा ये कहना होता है कि पहले वो फर्ज अपना अदा करना है। फिर भी जिनके घर से खुशी से परमिशन मिलती थी, लगभग मैं समझती हूँ 30-40 भाई थे, 350 जितनी बहने थी, और इनके जीवन में पवित्रता की धारणा आने लगी, अन्न शुद्धि होने लगी, उनके जीवन नियम संयम वाले बनने लगे, तो फिर धीरे धीरे उनके पतियों के तरफ से, परिवार के तरफ से, समाज के तरफ से फिर विघ्न आने लगे, विरोध होने लगा। क्योंकि गृहस्थ में रहकर पवित्र जीवन ये तो अब तक किसी ने बनाया ही नहीं था। जो साधु संत तपस्वी योगी बने वो घरवार छोड़ के बने, लेकिन इस सत्य ज्ञान के आधार पर हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती है, हमारी दृष्टि वृत्ति में परिवर्तन आता है, तो स्वाभाविक एक पवित्र संबंध बन जाते हैं। तो उसके कारण समाज में विरोध होने लगे और बहुत ही विघ्न आने लगे, लेकिन जो समर्पित भाई बहने थे उनकी लगन पक्की थी, ज्ञान सत्य था, जो बेस था वो प्यूरिटी और तपस्या का था, इसलिए कितनी भी पिकेटिंग हुई, धरना हुए, माताओं बहनों को मार पड़े, अत्याचार हुए, सितम हुए, लेकिन उनकी प्रभु की लगन और बढ़ती ही गई। हमारी जो दादी इस ज्ञान सरोवर की जो हेड थी, पिछले साल ही नवंबर में उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, वो हमारी दादी मनोहर इंदिरा जी, जो स्पेशलिस्ट थी बाबा की जीवन कहानी सुनाने में, वो दादी जी एक एग्जाम्पल थी जिसने अपने जीवन में लौकिक परिवार के तरफ से बहुत बंधन और बहुत सीतम सहन किए, लेकिन आखिर उनकी प्रभु के प्रति लगन देखकर माँ बाप ने परमिशन दी और वो समर्पित हुए। तो बाबा ने फिर, क्योंकि जब हैदराबाद में इस प्रकार से देखा, तो बाबा ने कराची में स्थानांतरित हो गए। वहाँ बाबा ने 5-7 भवन ले लिए और पूरा जो ये सत्संग ग्रुप था वो कराची में शिफ्ट हो गया, और वहाँ अलग अलग भवन में, एक भवन में माताएं और कन्याएं रहती थी, एक में भाई रहते थे, एक में बाबा और उनके जो भी रिश्तेदार लगते थे वो सब रहे, ताकि लोगों का विरोध कम हो और मूल बात को समझें कि वास्तव में यहाँ क्या सिखाया जाता है। क्योंकि बरसों से भक्ति करने के बाद भी विकार नहीं छूटते, अशुद्ध आहार विहार नहीं जाते, जीवन में संयम नियम नहीं आते हैं, और यहाँ आते ही लोगों के जीवन में ये धारणाएं हो गई, तो लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते थे कि आखिर ये कैसे हुआ। तो वो गलत बातें करते थे, कहते थे जादू है, कोई कहता था कि ये गलत चीजें हैं, इस प्रकार से काफी विरोध होने लगे। तो बाबा ने कराची में इसको शिफ्ट किया और धीरे 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 गवर्नमेंट के द्वारा भी इंक्वायरी हुई और उन्होंने समाज को फिर बताया कि नहीं, ये कार्य सत्य है, श्रेष्ठ है और बहुत ही शुद्धि से चल रहा है। तो लोगों में शांति हुई और फिर पार्टीशन के बाद, क्योंकि 47 में जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए और विद्यालय का लक्ष्य तो सारे विश्व को ये ईश्वरीय संदेश देने का था, तो शायद पाकिस्तान में रहकर ये कार्य करना सहज नहीं हो पाता। तो बाबा ने 1950 में भारत में स्थानांतरित होने के लिए आदेश दिया और 1950 मई मास में यह विद्यालय भारत में स्थानांतरित हुआ। पहले बाबा ने 5-10 बहनों के ग्रुप को भेजा कि जाकर के देखो कहाँ हमें ऐसा बड़ा प्रबंध मिल सकता है जो हम 300-350 लोग रह सके और ये कार्य कर सके। तो बाबा ने बहनों को अहमदाबाद में भेजा, क्योंकि बाबा का एक गुरु स्वामी गंगेश्वरानंद थे जो अहमदाबाद में वेद मंदिर में रहते थे, तो उनके पास ये आए। तो गंगेश्वरानंद जी ने हमें ये कहा दादियों को कि आप माउंट आबू जाइए, वहाँ कई राजा महाराजाओं के महल खाली पड़े हैं तो वो आपको मिल जाएंगे और वहाँ आप अपना कार्य कर सकेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ब्रिज कोठी, भरतपुर राजा का जो महल था वो किराए पर लिया गया, जहाँ भी कुछ होटल सनराइज पैलेस बनी हुई है, फिर पोखरान हाउस, धौलपुर हाउस, मैंने ऐसे अलग अलग राजाओं के महलों में शिफ्ट होते रहे और आखिर अभी जो हमारा पांडव भवन है वो पोखरान हाउस है। पोखरान पोखरा यहाँ राजस्थान में एक स्थान है ना, वहां के राजा का वो महल था। लगभग वो 7 एकड़ की जमीन थी और एक ही बीच में पुराना मकान था। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर नक्की लेक के पास ही वो कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम पांडव भवन है, वहां फिर ये लोग रहे, वो खरीद लिया गया। और 1952 में जब बाबा ने ये देखा, 14 वर्ष तक इन्हें लगातार आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और समाज की सेवा, इन 4 विषयों पर उन्हें बहुत ही प्रैक्टिकल, उनको सघन प्रशिक्षण दिया गया और बाबा ने इन सब के जीवन को दिव्य बनाया, उनके संस्कारों को दिव्य बनाया। 14 वर्ष तक दिन रात उन्हें प्रैक्टिकल ये शिक्षा, पालना, प्यार दिया गया और उनके जीवन को डिविनाइज किया गया। तो जब बाबा ने देखा कि अब ये स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए हैं, तो बाबा ने 1952 में जो समर्पित दादियां थी, जो आज दादियां हैं, उस समय तो वो अपनी युवा अवस्था में थी, तो बाबा ने उनको भारत के अलग अलग शहरों में भेजा कि आप जाइए और वहां जाकर के ये रूहानी सेवा का कार्य शुरू करें। तो कईयों के मित्र संबंधी संपर्क जो कुछ थे, और 14 वर्ष तक 350-400 भाई बहनों का भरण पोषण, उनका खर्च, निर्वाह सब बाबा की प्रॉपर्टी और बाबा के साथ साथ हमारी, जैसे दादी शांतामणि जी है, दादी चंद्रमणि जी है, एक दादी सावित्री थी, उनके परिवार के परिवार समर्पित हुए और उनकी प्रॉपर्टी से इन सब की पालना होती रही। तो बाबा ने इन सबको फिर सेवा में भेजा। उस समय विद्यालय के पास कोई धन नहीं था, कोई साधन नहीं थे, कोई संपर्क नहीं थे, परंतु दादियों के पास शुद्ध चरित्र था, सत्य ईश्वरीय ज्ञान था, परमात्मा में निष्ठा थी और समाज की सेवा की लगन थी, पवित्र चरित्र था। बस ये अलौकिक संपदा लेकर दादियां सेवा में निकली। किसी को बाबा ने बॉम्बे भेजा, कलकत्ता, पटना, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, इन सब यूपी में, कानपुर, इन सब तरफ बाबा, लखनऊ, इन सब तरफ बाबा ने सबको भेजा। और सर्वप्रथम पहला सेवा केंद्र दिल्ली में हमारा खुला, जो दादी मनोहर इंद्रा की मैंने बात की, वो दादी मनोहर इंद्रा जी, अभी जो हमारी हेड हैं दादी जानकी जी, और इससे पहले जो हमारी एडिशनल हेड थी दादी दीदी मनमोहिनी जी, इन्होंने जमुना के कंठे पर बैठकर सेवा कार्य आरंभ किया। और उनके क्योंकि 14 वर्ष की साधना के बाद ये सेवा में निकले, तो लोगों ने उनसे भी बहुत अच्छे दिव्य साक्षात्कार किए, अनुभव किए, तो जहां तहां निमंत्रण मिलने लगे, सहयोग मिलने लगा और सेवा केंद्र शुरू हुए। तो इस प्रकार से बाबा का कार्य आरंभ हुआ। शुरुआत में पंजाब, हरियाणा में काफी बहनें समर्पित हुई, लगभग एक अमृतसर शहर से ही एक साथ 100 से अधिक बहनें समर्पित हुई, तो वहां से भी काफी विघ्न और काफी सितम सहन करना हुआ। सिंध के बाद पंजाब और हरियाणा में विद्यालय ने काफी विघ्नों को फेस किया, क्योंकि समाज सोचने लगा कि इतनी बहनें एकदम इसमें समर्पित हुई है तो आखिर क्या है। फिर धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये कैसे सत्य ज्ञान है, पवित्र जीवन बनता है और कैसे बहने सेवा में लगती है। तो बाबा ने जब 1969 18 जनवरी पर बाबा ने अपना अव्यक्त हुए, अपना भौतिक शरीर छोड़ा, उस समय बहुत कम सेवा केंद्र, लगभग 150-200 सेवा केंद्र ही उस समय खुले थे, लेकिन बाबा ने और मम्मा ने और दादियों ने एक ऐसी पावरफुल नींव तैयार की कि उनके द्वारा अनेक बहनें हमारी तैयार होती गई। आज जो भी हमारे वरिष्ठ बहनें हैं, वरिष्ठ भाई है, वो दादियों के द्वारा तैयार हुई पहली जनरेशन, और उसके बाद तो कितने भाई बहने तैयार होते गए। आज मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि बाबा का कार्य देश विदेश में फैल चुका है, न सिर्फ भारत में, लेकिन भारत के अलावा पांचों ही खंडों में 130 से भी अधिक देशों में लगभग 9000 सेवा केंद्र है, जहां समाज की सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा का कार्य होता है। विद्यालय अपने भाई बहनों के तन मन धन से समाज की रूहानी सेवा करता है। अक्सर आने वाले मेहमानों को ये प्रश्न होता है कि इतना बड़ा कार्य कैसे चलता है, इसका इकोनॉमिकल साइड कैसे चलता है, तो वो बहुत ही सहज और सुंदर रीति से बाबा ने सेट किया है कि यहाँ जो भी भाई बहने आते हैं और इस ईश्वरीय ज्ञान और योग का लाभ लेते हैं, वे इस ज्ञान और योग से इतने लाभान्वित होते हैं, उनके जीवन में इतना परिवर्तन आता है, उनके व्यसन, फैशन, पिक्चर, होटल, बुराइयां, सब जो अश्लीलता है जीवन की, वो सारी खत्म हो जाती है, उनके संस्कारों में परिवर्तन आता है, अंधश्रद्धा खत्म होती है, गलत रस्म रिवाज खत्म होते हैं, क्योंकि ज्ञान से अवेयरनेस आती है, उनके कर्मों में सुधार आता है, उससे अपने में आंतरिक आनंद आता है, तो उनको पिक्चर होटल व्यसन की जरूरत नहीं रहती है। तो उनको अपने जीवन में इतना फायदा है कि वे बहुत विलिंगली और वॉलंटियरी यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस प्रकार सर्व के सहयोग से ये विद्यालय चल रही है। धनी कहे वो लाखों रुपए में मदद करते हैं, और जो गरीब साधारण भाई बहने हैं वो भी अपनी शक्ति अनुसार मदद करते हैं। लेकिन बाबा का सदा शुरू से कहना ये है कि सर्व के सहयोग से कार्य चलन, ताकि सबको लगे ये हमारा अपना कार्य, जिसमें जितनी शक्ति है जैसी शक्ति है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से और दिल से मदद करें। तो तन की शक्ति से यज्ञ सेवा करने वाले भाई बहने भी हैं, अपनी बुद्धि से प्लानिंग क्रिएटिविटी करने वाले भाई बहने भी हैं, अपनी कला से कौशल से अपनी स्किल से मदद करने वाले भी भाई बहने हैं, तो धन से मदद करने वाले भाई बहने भी हैं, और ये ईश्वरीय कार्य है, हर कोई मददगार बनता है। तो हमारी मेथड ये है कि हमारे मोस्टली सेवा केंद्र इनविटेशन पर खुलते हैं। मान लो आज आप ये ज्ञान सुनकर जा रहे हैं और आपको अच्छा लगता है, पर आपके गांव में शहर में आपकी सोसाइटी में केंद्र नहीं है, तो वो लोग विद्यालय को इनवाइट करते हैं कि दादी को लिखते हैं कि दादी आप दो बहनों को भेजिए, हम सारा प्रबंध करेंगे, दो वर्ष तक हम पूरा खर्च उठाएंगे, पर हमारे विस्तार में ये सेवाएं होना जरूरी है और हम उसके लिए जवाबदार बनते हैं। तो वहां बहनों को दादी भेजते हैं और दो वर्ष में इतनी सेवा होती है कि इससे जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, भाई बहने आते हैं, फिर वे अपने उस केंद्र के खर्च को पुल ऑन कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे हरेक सेवा केंद्र इकोनॉमिकली अपने इंडिपेंडेंट है, अपने पांव पर है, बल्कि सभी सेवा केंद्र हेडक्वार्टर को मदद करते हैं। जैसे बच्चे बाहर कमाने जाते हैं और वतन में माँ बाप को भेजते हैं मदद, तो इस प्रकार हमारे हरेक सेवा केंद्र के भाई बहने बहुत दिल से यहाँ हेडक्वार्टर में मदद करते हैं, और इस प्रकार क्योंकि हेडक्वार्टर उन सबके लिए ही है, इसलिए सबके सहयोग से ये सारा कार्य चलता है। आज लगभग हमारे जैसी और कुछ भाई, लगभग 2-3 हजार भाई बहने हैं सारे वर्ल्ड में, मोस्टली हेडक्वार्टर में ही लगभग 800 हजार भाई है, और कुछ हमारे स्टेट हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर, सब जोनल हेडक्वार्टर, कहीं एक दो ऐसे करके 2-3 हजार, बाकी हम टोटल हम 16 हजार भाई बहने हैं जो इसमें समर्पित हैं पूर्ण रूप से, और वे अलग अलग केंद्र में रहकर सेवा का कार्य करते हैं। तो आज हम अपना जीवन इसमें समर्पित करते हैं, तो हमारे माता पिता भी समझते कि आज अगर हम अपने बेटी की शादी कराते तो कितना खर्च होता, जीवन भर कोई ना कोई प्रसंग पर खर्च चलता ही रहता है, तो वो लोग भी बहुत खुशी से कि ये भगवान से अपना जीवन जोड़कर समाज की सेवा का कार्य कर रही है, तो वो लोग भी बहुत दिल से मददगार बनते हैं। तो इस प्रकार इकोनॉमिकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेने पड़ते हैं, कोई फंड्स रेज नहीं करने पड़ते हैं, हमें कोई डोनेशंस नहीं लेने पड़ते हैं, यहाँ सभी कार्य समझ प्यार से होता है। मेहमान आते हैं, हमारी बहनें भी उनको बताती है कि वे देखो हम माउंट आबू जा रहे हैं, वहाँ हम 5 दिन रहेंगे, ज्ञान योग की पढ़ाई करेंगे, वहाँ की सब व्यवस्थाओं का लाभ लेंगे, तो आप अपने दिल से जो कंट्रीब्यूशन करना चाहे करिए। तो मेहमान भी करते हैं, इसलिए कोई कंपल्शन नहीं है, कोई फीस फिक्स नहीं है, अपने दिल से जो ज्ञान योग का लाभ लें और जैसा मदद करना चाहें। तो इस प्रकार से अभी भी ये विद्यालय का कार्य चल रहा है और बाबा के अव्यक्त होने के बाद आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, बाबा के बाद दादी प्रकाशमणि जी निमित्त बने और उन्होंने 69 से लेकर 2007 तक 38 ईयर्स दादी जी के नेतृत्व में विद्यालय का बहुत ही एक्सपांसन हुआ और देश विदेश में सेवाएं फैली। 2007 में दादी ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, तो उसके बाद आदरणीय दादी जानकी जी हैं जो अभी इस विद्यालय की हेड हैं। पहले दादी जानकी एडिशनल हेड थी और हमारे एब्रॉड के केंद्रों की टोटल जवाबदार थी और दादी जानकी जी का ही ये पूरा विदेश में भारत की आध्यात्मिकता फैलाने का श्रेय उनको जाता है कि दादी जी के प्यार पालना और उनकी शिक्षा ज्ञान योग से विदेश के भाई बहनों को तैयार करके वहां इतने 130 देशों में सेवा केंद्र, लगभग मैं समझती हूँ 500-600 से अधिक केंद्र विदेश में हैं। और वो भी यहां से तो शुरू में जो 5-7 बहनें गई, आपने दीदी के परिचय में सुना होगा, निर्मला दीदी जी के परिचय में, कि 1971 में बाबा ने उसको पहले विदेश में भेजा और इस प्रकार हमारी और 2-4 बहनें हैं। वहां जाकर उन्होंने भारत की आध्यात्मिकता को इतना लॉजिकल और प्रैक्टिकल लाइफ से प्रस्तुत किया कि वहां के भाई बहनों को तैयार करके वो सारे वहां की ब्रांचेस संभालते हैं। तो अगर आप इस विद्यालय में कभी अक्टूबर मास में विजिट करें, दिसंबर में विजिट करें, फेब्रुआरी या मार्च में विजिट करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ फुल फॉरेनर्स होते हैं। शिवरात्रि पर यहाँ लगभग 130 देशों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे फॉरेन के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग होती है। तो ये स्पिरिचुअलिटी है, इसलिए इसमें कोई धर्म, जाति, भाषा, आयु, लिंग के भेद नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हर आत्मा को स्पर्श करती है और हर आत्मा को जीवन में शांति, सुख, आनंद, प्रेम चाहिए, तो नेचुरली जब वो इससे अनुभव होता है तो धर्म, संप्रदाय, जाति के सब भेद खत्म हो जाते हैं। अगर आप हमारे विदेश के केंद्रों में देखो तो एक गोरी बहन होगी, एक काली बहन होगी, एक भारत की होगी, पर कैसे सब आत्मिक भाव से साथ में रहते हैं और ये सेवा कार्य करते हैं। तो आज भी करने के लिए निमित्त दादियां हैं, बड़े भाई बहने हैं, हम निमित्त बहने हैं, लेकिन ये आपको स्पष्ट रहे कि ये कार्य न ब्रह्मा कुमारी का है न ब्रह्मा का है, ये कार्य ऑलमाइटी परमात्मा का है। और आज भी बाबा के डायरेक्शन पर ही, डिवाइन मैसेजेस के आधार पर ही सारा कारोबार होता है। हम तो खुद, मुझे ये भाग्य मिला कि 93 से मैं यहाँ हेडक्वार्टर में हूँ और दादियों के साथ यहाँ के इंटरनल मैनेजमेंट के कार्य में मुझे साथी बनने का मौका मिला है। तो मैं देखती हूँ कि कैसे उन्होंने, कोई मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, लेकिन बाबा ही कराने वाला है, उनके द्वारा ही उनकी श्रीमत पर ये सारा कारोबार चलता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वो कॉर्पोरियल मीडियम है जिसके द्वारा स्वयं परमात्मा शिव ने ये अपना कार्य किया है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा को हम भगवान नहीं कहते हैं, ब्रह्मा कोई हमारा गुरु नहीं है, लेकिन ब्रह्मा वो एग्जाम्पल है, वो फर्स्ट निमित्त बनी हुई आत्मा है जिसने भगवान के श्रीमत को जीवन में धारण कर हमारे सामने उदाहरण पेश किया। क्योंकि भगवान तो निराकार है, उसके ज्ञान को प्रैक्टिकल कैसे करना है वो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। इसलिए हमारे लिए वो रोल मॉडल है, वो एग्जाम्पल है कि अगर वो अपने निश्चय और लगन से भगवान की श्रीमत पर संपूर्ण बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। हम भी परमात्मा को याद कर ब्रह्मा बाप की तरह फॉलो कर हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो हम भी इसी पुरुषार्थ और लक्ष्य से यहाँ चलते हैं कि हम मन वचन कर्म से और तन मन धन से कैसे शिव बाबा के श्रीमत पर चले और इस कार्य में अपने जीवन को सफल करें। तो आप सभी भी भाग्यशाली आत्माएं हैं और आप भी आज से अपने इस अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा को पहचान कर शिव बाबा के श्रीमत पर अपने जीवन को पवित्र और श्रेष्ठ बनाएंगे तो जो नए पावन विश्व की स्थापना का कार्य चल रहा है उसमें हम सबका एक बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। तो आज से आप याद रखेंगे कि आपको तीन पिता है। एक आपके शारीरिक पिता है जिसको लौकिक पिता कहते हैं, जो हमें फिजिकल बर्थ देते हैं, शरीर देते हैं, ये चित्र देते हैं। ये है अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा जो हमें ये डिवाइन बर्थ देते हैं और चरित्र कैसे बनाना है शुद्ध उसका हमें गाइडलाइन देते हैं। और तीसरे हैं हमारे अविनाशी पारलौकिक पिता परमात्मा शिव, जिससे ही हमें ज्ञान योग प्राप्त कर इतना दिव्य बनना है कि हम नए विश्व में मालिक बन सके। तो हम तीन पिता के बच्चे हैं और तीनों से हमें ये चरित्र का अलौकिक ज्ञान युग का वर्षा प्राप्त करना है, ये हमारा बर्थ राइट है। ओम शांति।